नमस्कार। ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी विशेष लाइव प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से हम आपके साथ सीधे जुड़ रहे हैं और आपके लिए लेकर आए हैं 21 दिवसीय स्पेशल कार्यक्रम जिसका नाम है संपूर्ण योग। इन 21 डेज के योगा चैलेंज में हम योग को उसके संपूर्ण स्वरूप में सीखने के प्रयास कर रहे हैं। यानी जब भी हम योग समझते हैं, सुनते हैं, तो एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग जो हमारे मन में आता है वो है योगासन, कोई प्राणायाम या एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट एक्चुअल में योग सिर्फ इतना ही है क्या? योग के पूरे स्वरूप को समझने के लिए भारत का अध्यात्म बहुत ही गहरे चिंतन को देता है और पतंजलि, जिन्हें योग सूत्रों के देने वाले के रूप में हम याद करते हैं, वो भी योग के अष्ट अंग बताते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, समाधि इत्यादि अलग 8 प्रकार बताते हैं। उन अलग अलग एस्पेक्ट्स में से हम हर दिन योगासन को कर रहे हैं, योग के बारे में जानकारी और बोध हासिल कर रहे हैं और साथ में मेडिटेशन यानी कि ध्यान भी सीख रहे हैं। तो आने वाले 30-45 मिनट में हम प्रयास यही करेंगे कि हम थोड़ा बहुत फिजिकल योगासना करें, फिर इसके साथ साथ हम योग के ऊपर बोध सुने और फिर हम सब मिलकर मेडिटेशन भी करेंगे। और आज हमारे साथ शुरुआत करने के लिए कार्यक्रम के पहले हिस्से में योगासन करवाने के लिए हरीश वैद्य जी जुड़ रहे हैं सीधे बड़ौदा से। आइए चलते हैं हरीश वैद्य जी के पास करने के लिए योगा और आप भी हो जाइए तैयार अपने योगा मैट्स पर या जहां पर आप बैठे हैं वहां कंफर्टेबल होकर योगासन हमारे साथ साथ कीजिए। चलिए सीधे चलते हैं योगाचार्य हरीश वैद्य जी के पास।
वंदे मातरम। योग यात्रा में अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको एक सविशिष्ट आसन की ओर ले जा रहे हैं, वो है उष्ट्रासन। ये उष्ट्रासन आपकी रीढ़ की हड्डियों की सारी दिक्कतें समाप्त कर देगा। ये खासकर आपको लोअर बैक में जो पेन है, फिर घुटनों में जो पेन है, आपकी एड़ियों में जो पेन है, और जो लोग फ्लैट फुट है, जिनके पैर बिल्कुल सपाट है, उन लोगों के लिए ये अधोष्ट्रासन और उष्ट्रासन बहुत ही पावरफुल है। वो आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। पूर्ण उष्ट्रासन में मत जाइए, अगर आपका बैलेंस है तो ही आप करिए। बहुत ही पावरफुल है, इससे स्कंध मेखलाओं में भी आराम मिलता है, गले में भी आराम मिलता है, सर्वाइकल में भी इनको आराम मिलता है। इसलिए पहले देख लीजिए इस पोस्चर को आप। मैं रितुबेन को कह रहा हूं कि आप इस तरफ मुड़ जाइए। अब बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। पहले हम अर्धोष्ट्रासन देखेंगे। दोनों हाथ कमर के बल पर रख दें, जितना हो सके झुकिए। ऊपर आकाश में देखना है, जैसे सूर्य 12 बजे आकाश में होता है, और पूरा संतुलन बनाना है घुटनों पर, घुटनों में लगभग 1 बिल्लस का अंतर हो। ओके, अभी सांसें सांसें लेते लेते मूल स्थान पर वापिस आए। ओके, ये हुआ अर्ध उष्ट्रासन। ये पेट में भी बहुत फायदे करेगा, आंतों की जिनकी सर्पाकार गति रुक गई है उनको भी फायदे करेगा। बहुत ध्यान रखिए, ये प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, ये पीरियड्स के वक्त भी नहीं कर सकते हैं। फिर जिन पुरुषों को लोअर बैक में प्रॉब्लम है, जिनको पेट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस वगैरह है, जिनकी प्लीहा पर स्वेलिंग है, वे लोग भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी कारण से पेट में कहीं भी स्वेलिंग है, वे लोग भी नहीं कर सकते हैं। जिनको घुटनों में दर्द है, वे लोग भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी उष्ट्रासन की, जो आपको फ्लैट फुट में भी मदद रूप होगा, वो देख लेते हैं। चलिए, अभी पूर्ण उष्ट्रासन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। उंगलियों के बल पैर बिल्कुल टिका दे, पूरा बैलेंस आपने पैरों की उंगलियों पर करना है। एक हाथ पीछे से ऐसे ले जाइए, दूसरा हाथ भी इस तरह से ले जाइए, एड़ी पकड़िए, आज्ञा चक्र बिल्कुल फ्लैट हो, ऊपर देखेंगे आप, और इसी से नितंब में बहुत, जिनका नितंब फैले हुए हैं, बड़े हैं, उनको फायदे होंगे। जिनकी जंघाओं में बहुत चर्बी है उनको भी फायदे होंगे इससे। कोरोना काल में जिनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था और लंग्स बिल्कुल सिकड़े हुए हैं, ये बिल्कुल उसमें फौलादी बना देंगे उनको। अभी सांसें लेते लेते आप मूल स्थान पर वापिस आ जाइए। थोड़े हल्के से चक्कर आएंगे अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही पावरफुल है आसन। खासकर ध्यान रखना करते वक्त कि आप पीछे की ओर गिर ना जाएं। किसी को पीछे खड़े रखना शुरू शुरू में, या तो कोई सॉफ्ट गद्दा बिछा देना। ये आसन करने में जरा भी दिक्कत नहीं है, हाँ, सिवाय कि आपको घुटनों में तकलीफ हो, आर्थराइटिस हो, लोअर बैक में तकलीफ हो, गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ हो, लिवर सिरोसिस हो, या आपकी स्प्लीन में कोई स्वेलिंग वगैरह हो, तो आप नहीं करेंगे। आपके योग के इंस्ट्रक्टर को पूछ करके कुछ मर्यादाएं और भी सीख लेना। अच्छा, ये आपको आसन कैसा लगा इसमें जरूर कमेंट लिखना, और मैं आज के विषय का पूरा श्रेय भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी प्राणों से भी अधिक प्रिय जगत जननी भारत माता को प्रणाम करता हूँ, और आपको भी प्रणाम करके आज के विषय के समापन की आज्ञा चाहता हूँ। वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी का और हमारे योगाचार्य हरीश वैद्य जी का, जिन्होंने आज हमें उष्ट्रासन सिखाया, जिसे हम अंग्रेजी में द कैमल पोज कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि हम सभी बैठकर इस आसन को कर पाएंगे, और हमें हर दिन एक एक नए आसन को सीखने को मिल रहे हैं, और आज नौवां दिन है, तो आज हमने आज तक 9 से ज्यादा आसन सीख लिए हैं, तो आप सभी उनका प्रयोग भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आइए आज के तत्व बोध पर चलते हैं। आज नौवां दिन है और आज के विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ राजयोगिनी वीणा दीदी जी हैं, जो खास हमारे साथ कर्नाटका से जुड़ रहे हैं। और इस लाइव प्रस्तुति में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, योग से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके प्रश्नों को हम सीधे कमेंट से लेंगे, फेसबुक या यूट्यूब, जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां से हम स्क्रीन पर, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं वैसे स्क्रीन पर हम आपके कमेंट्स को दिखाएंगे। अगर आप सवाल पूछें तो भी, या कुछ कमेंट कहना चाहते हैं, कुछ फीडबैक लिखना चाहते हैं, तो भी आप लिखें जरूर, ताकि हम इसे स्क्रीन पर दिखा सकें। और हम अभी दीदी जी से 10-15 मिनट तक सुनेंगे आज के विषय के बारे में, फिर 10 मिनट हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आप जो भी प्रश्न लिखना चाहते हैं बेझिझक किसी भी समय इस कार्यक्रम के दौरान लिख सकते हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न योगासनों से संबंधित हैं तो वो भी प्रश्न लिखिए, उन प्रश्नों को हम कल के कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में और सुनते हैं आज का बोध।
ओम शांति।
नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि इस कोरोना काल में हम आप सभी दैहिक मानसिक दोनों तरीके से, जो बहुत उपयुक्त तरीका है, पतंजलि जी के योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग के बारे में जानते हुए पूर्ण अष्ट अंगों को जीवन में लाने का छोटा सा जो ये प्रयास है, आज के इस प्रस्तुत परिस्थिति में ये बहुत जरूरतमंद महसूस होता है हम सभी को। इसलिए इसके लिए भगवान को और आप सभी को धन्यवाद देते हुए, जैसे आपने कहा पतंजलि महर्षि जी के योगानुसंधान के अनुसार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये 8 अंग माने जाते हैं योग के। जिस 8 अंग के बारे में इस कार्यक्रम के संपूर्ण योग के कार्यक्रम में रोशनी दी जाएगी, प्रकाश फैलाया जाएगा, आज मैं आपके सामने दूसरा जो अंग है नियम, उसमें से जो चौथा भाग है तप, उसके बारे में कुछ विषय आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वैसे माना जाए तो तप इस शब्द का संस्कृत का अर्थ होता है जलाना, भस्म करना, अर्थात रूपांतर करना, परिवर्तन करना। इसी तप शब्द के आधार से तपस्या शब्द हम सुनते आए हैं। वैसे तो तपस्या या तप, इसका मूल उद्देश्य है मानव के अंदर जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक मनोभावनाएं हैं या वाइसेस है, उसे अपने विल पावर से, डिसिप्लिन से, डिटर्मिनेशन से तथा योगाभ्यास से भस्म करना या बदलाव लाना, ये तप का मूल अर्थ माना जाता है। वैसे आज के जमाने में हमें तप की क्या जरूरत है या तपस्या की क्या जरूरत है? तप उसे कहते हैं जो एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ चित्त के साथ साधना किया जाए, उस साधना को तपस्या मानते हैं। वास्तव में मैं जरूर श्रीमद् भगवद गीता का आधार लेना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि योग की जो परिभाषा है, पतंजलि जी ने भी योग का ये जो परिभाषाएं लिखी है ये श्रीमद् भगवद गीता से लिखी है। उसमें योग का मतलब बताते हैं समत्वम योग उच्चते, कीपिंग द बैलेंस इज योगा। जो समत्व बनाए रखना है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको समाप्त करके पॉजिटिविटी को फैलाना या पैदा करना, ये तपस्या का मूल उद्देश्य है। वैसे गीता में 3 तरह के तपस्या के बारे में बताते हैं। एक है मानस तपस्या, एक है शारीर तपस्या, एक है वाग्मय तपस्या। ये 3 तरह के तपस्या के बारे में श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है। उसमें से अगर हम देखते हैं तो एक है शरीर के द्वारा किए जाने वाले जो योगासन है, एक्सरसाइज है, देह दंडन जिसको कहते हैं। एक है मन के द्वारा किए जाने वाले तपस्या, अच्छे अच्छे विचारों को, सकारात्मकता को, दैविकता को अपने अंदर भरना, मन को संपूर्ण तरह से अपने नियंत्रण में रखना या मन को संभाल के रखना, मन को सुमन बनाना। और एक है वाग्मय तपस्या, है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्यम अप्रियम न ब्रूयात जैसे कहा जाता है। इसलिए हमारी वाणी कैसी हो, मीठे वाणी है होना चाहिए, मधुर भाषी होनी चाहिए, और हमारी बोल सदैव सभी के लिए प्रेरणादायी हो, खुद के लिए भी कभी पछताने वाला बोल न कि होना चाहिए। ये तपस्या के ये जो 3 प्रकार है, इसमें 3 सत्व रजस और तमस गुण के आधार से तपस्या को परिभाषित किया जाता है। और वर्तमान समय कौन सी तपस्या की जरूरत है? वैसे माना जाए तो इंद्रिय निग्रह तपस्या का मूल मंत्र है, इंद्रिय निग्रह। वैसे तो हम सीरियल्स में, सिनेमा में या जो भी हमारे मीडिया से उसमें देखते हैं, कहीं जंगल में चले जाओ, एक पेड़ पे बैठ जाओ या बड़े पत्थर पे बैठ जाओ, सालों भर, वर्षों भर, सौ सौ साल तक तपस्या करते थे, ऐसे हमारे पुराणों में सुनने को मिलता है। लेकिन वास्तविकता में तपस्या वो है जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करें, उसके लिए हमारे अंदर दृढ़ चित्तता हो। ये जो दृढ़ता हम बनाए रखना चाहते हैं, जो हमसे नहीं होता है, उसके लिए हमें अपने अंदर ये जो अपने आप को शुद्ध करने की तरीके बताए जाते हैं। जैसे कि एक बहुत सुंदर छोटी सी अगर एग्जाम्पल मैं दूं आपको, दूध में से रोशनी कैसे निकलती है बताइए, किसने कहा दूध से रोशनी निकलती है? लेकिन सच में जी हाँ, दूध से रोशनी निकाला जा सकता है। दूध को आप दही जमाइए, दही के बाद उसको मथन कीजिए, दही के मथन से जो माखन निकलता है उसे अच्छी तरह से घी बनाइए और उस घी में बाती डालकर दिया बना दीजिए और दिए को जलाने से रोशनी ही रोशनी हो जाती है, जो शुभ माना जाता है। इसलिए तपस्या का भी यही अर्थ है, मनुष्य के अंदर छिपे हुए ताकत को बाहर निकालने के लिए। और शरीर के जैसे देखिए, शारीरिक योगासन जब हम करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर के हर अंग को हम एक्टिव बनाए रखना और उससे बीमारियों से दूर रहना, स्टेमिना को बढ़ाए रखना, इसके ऊपर हम अटेंशन देते हैं। इसी तरह जो मन की तपस्या है, मन को सशक्त बनाना, जैसे मैं पहले भगवद गीता की बातें कह रही थी, समत्व आज की दुनिया में जैसे फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, उसी तरह से मेंटल फिटनेस भी बहुत बहुत जरूरी है। जिसकी जरूरत लेट हमें महसूस होता है, तब तक बहुत लेट हुआ होता है। इसलिए ये जो तपस्या की बात हम कर रहे हैं, ये निरंतरता से, ठीक है अगर हमारे पास समय नहीं है, हम आधा घंटा एक घंटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट हम कंटिन्यूअसली ये मन की तपस्या को बनाए रखें और हमारे बात शब्दों पर, जुबान पर हमारा नियंत्रण सदैव हो, जिसके लिए वाग्मय तपस्या की बातें कही गई हैं। इसलिए वास्तविकता में तपस्या उसे कहते हैं एक उद्देश्य के लिए फोकस रहे और अपने मन को एक परमात्मा के साथ जोड़े रखे, है ना। ये तीनों तपस्या, जो शारीर तपस्या, मानसिक तपस्या या वाग्मय तपस्या की बातें जब हम करते हैं, तो तीनों का उद्देश्य है शरीर को फिट रखते रखते हम ज्यादा बॉडी कॉन्शियस में ना आ जाए, लेकिन हमें याद रहे शरीर भी साथ तब तक हमारी देगा जब तक हमारा मन हमारा साथ देगा। मन तब तक साथ देगा तब तक मैं आत्मा इस शरीर में रहूंगी। इसलिए कहा जाता है कि ये जो समत्व की बातें होती है, ये तपस्या का मूल मंत्र है, कीपिंग द बैलेंस, है ना। शरीर को फिट रखते मन को भी फिट रखे, मन को फिट रखने के लिए मन को मनमनाभव करें, अर्थात मन को भगवान के साथ जोड़े रखें। जब मन जिस जगह पे जुड़ा रहेगा उसी तरह की अनुभूति करता रहेगा। अगर मन को इधर उधर की बातों में, दुनियावी बातों में, नेगेटिव विचारों में हम उलझा के रखेंगे तो मन का असर तन पर होगा, तब शारीरिक तपस्या भी ठीक से नहीं कर सकेंगे। अगर मन उलझनों में होगा तो हमारी जुबान से बातें भी गलत गलत ही निकलेगी, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी तीनों तपस्या खराब हो जाएगी। तो एक तो तपस्या का मूल उद्देश्य है परिवर्तन लाना। परिवर्तन कभी भी गिरावट की ओर नहीं होता है, परिवर्तन सदैव ऊंचाई की ओर ही हमें ले जाता है। इसीलिए सर्वशक्तिमान योगेश्वर भगवान जो मनुष्यात्माओं को तपस्या सिखाते हैं, उस सपत्य तपस्या का मूल उद्देश्य है। जैसे देखिए, हम योगासन करते हैं तो एक पोस्चर में समझे 5 मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड तक हम स्थिति जिसको कहते हैं बनाए रखते हैं, जैसे कि उष्ट्रासन दिखा रहे थे, उसमें 15 सेकेंड तक ऐसे ही खड़े रहना। इसी तरह हम अपने मन को कितनी देर तक अच्छाई में टिका सकते हैं, अच्छाई में टिकाते टिकाते हम अच्छाई का जो सोर्स है परमात्मा, उसमें हम कितनी देर तक अपने मन को टिका सकते हैं, यह तपस्या का मूल उद्देश्य है। अगर हमारी तपस्या माना तप का उद्देश्य है परिवर्तन करना, बदलाव लाना, जैसे कि सोने को एक हाई ग्रेड हीट में डालते हैं तो वो गलता है, उसके अंदर से जो भी कीचड़ है उसको निकाला जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, इसे खुद को भी प्योरीफाई करने के लिए, है ना, तपाना खुद को। तपाना माना आजकल दुनिया में क्या कहते हैं कि खुद को हठ से नियंत्रण करना। शारीरिक योगासन करते समय थोड़ा सा हठ जरूर करना पड़ता है, लेकिन मानसिक तपस्या करने के लिए हठ से ज्यादा दृढ़ता की जरूरत है, और एक खुद पे विश्वास के, आत्मविश्वास की जरूरत है, और परमात्मा के साथ खुद को जोड़ के रखने की जरूरत है। इसलिए अपने अंदर इन तीनों तपस्याओं के बारे में अच्छी तरह से स्पष्ट करते हुए खुद को ये हम अच्छी तरह से पहचान कर, अपने मन की शक्तियों को जान कर, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए खुद को एक ज्योति स्वरूप, आत्मा के स्वरूप में जानते हैं, मानते हैं, वो तो सदियों से मानते हैं ना, हम एक आत्मा है, लेकिन आत्मा के अंदर जो मन है, जब तक ये मन को हम परमात्मा के साथ नहीं जोड़ते हैं, मन की तपस्या को बरकरार नहीं रखते हैं या निरंतरता में नहीं लाते हैं, तब तक जितना भी हम शारीरिक तपस्या करें, है ना, ये कहते हैं साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, अगर शरीर ठीक है तो मन ठीक है, मन ठीक है तो शरीर ठीक है, दोनों तपस्या को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए ये तप योगासन या अष्टांग योग के अंदर तप का बहुत मूल मंत्र है कि तपस्या करने के लिए अपने अंदर एक अच्छी तरह से ठान लेना कि मुझे ये करना ही है, और उसी विश्वास के साथ उद्देश्य के ओर कदम बढ़ाना, और तीनों तरह की तपस्या में खुद को सदैव एक्टिव रखना, ये तपस्या का मूल उद्देश्य है। आपको ये तो पता होगा, जब हम तपस्या में लीन होते हैं, जबरदस्ती नहीं, स्वइच्छा से, दृढ़ता से, जब हम मन को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं दृढ़ता के साथ, खुशी की प्राप्ति होती है, शीतलता का अनुभव होता है, समाधान चित्त की महसूसता करते हैं, अपने अंदर एक दृढ़ता की, मनोबल की महसूसता करते हैं, क्योंकि परमात्मा की ताकत जब हम अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, तभी हमारे अंदर जीवन में जो चैतन्यता है वो सदैव बनाए रहता है। इसलिए तप माना खुद को बदलना, तप माना ट्रांसफॉर्मेशन, तप माना एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना, तपस्या का मूल मंत्र है सदैव खुद पर विश्वास रखना, और जिसके साथ हमारी तपस्या का तपस्या की डोर जुड़ती है उस परमात्मा पर भी विश्वास बनाए रखना। योगासन करते समय पहले हम नमस्कार करते, भास्कराय नमः, है ना, ऐसे कहते हुए हम परमात्मा को अपने पास बुलाते हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ मन बुद्धि को जोड़ने से, शब्दों को जोड़ने से, तो शरीर में भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ मन भी फ्लेक्सिबल रहेगा, उलझनों से मुक्त रहेगा, तनाव से मुक्त रहेगा। इसलिए मन की तपस्या का मूल उद्देश्य है मन तनाव से मुक्त हो, स्ट्रेस फ्री हो, और सदैव मन को शक्तिशाली बनाने वाला या मन को शक्तियों से भरने वाला परमात्मा हमारे साथ हो। इसलिए हम सदैव अष्टांग योग के बारे में अच्छी तरह से जानकर, तपस्या का मतलब आज के कलयुग में घर छोड़ के जंगलों में जाना या कहीं जाके हफ्तों भर, महीनों भर तपस्या करना, वो अलग चीज है, लेकिन घर में रहते हुए घर को भी भगवान के दिया हुआ सेवा स्थान समझकर, हमारी ड्यूटीज को हम अच्छी तरह से निभाए, साथ ही साथ ड्यूटीज करते हुए अपने बारे में जो ड्यूटीज है, मन को कहाँ लगाना है, चित्त को कहाँ लगाना है, शब्दों को किस भाव से बोलना है, उसके बाद उसके बारे में हमारी एक कंट्रोल अच्छी तरह से हो, इसी को ही वास्तविक रूप से तप कहा जाता है। तो चलिए हम आप सभी इस तपस्या के बल से इस लॉकडाउन के समय में अपने अंदर कुछ अच्छा बदलाव लाए, एक अच्छी अपने आप से एक प्रतिज्ञा करे कि आज से है ना मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं करूंगी, ये भी एक तपस्या है। मैं सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगी, ये भी एक तपस्या है। मैं भय से मुक्त हो जाऊंगी, अपने आप से ठान कर भय मुक्त होने के लिए भगवान को साथी बना लेना, ये भी एक तपस्या है। तो खुद को परिवर्तन करने की इस तप के राह पर हम आगे चलते रहेंगे और शक्तिशाली बनते जाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में तपस्या के अर्थ को हमें समझाया, ये बताया कि तपस्या किस चीज को कहा जाता है। इस शब्द के सही मूल को हमने पकड़ा, तपना यानी अपने आप को तपाना, जलाना या फिर अपने अंदर वो परिवर्तन ले आना। और ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे हम सभी को करने की आवश्यकता है, और इसीलिए पतंजलि इसे योग सूत्रों में एक नियम के रूप में बताते हैं हमें, और इसका बहुत ही गहरा महत्व है। और हम देखते हैं अक्सर लोग तपस्याएं करते हैं, अलग अलग प्रकार की तपस्याएं करते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक उपवास करते हैं, वो भी एक प्रकार की तपस्या है। कुछ लोग मौन तपस्या करते हैं, बातचीत नहीं करते, शांति में रहते हैं, शब्दों में नहीं आते, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। कुछ लोग ऐसे अलग अलग प्रकार हैं, और ऐसे आपने बताया कि ये जो बात कही जाती है कि अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, तो आपने कहा कि ये उसका उल्टा भी सही है कि एक साउंड माइंड के लिए भी प्रयास करने के लिए तपस्या हमारे लिए एक टूल बनकर आती है। हमारे कुछ दोस्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों को हम दीदी जी से पूछेंगे। राजू जी हमारे साथ हैं, राजू यूट्यूब से कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। वो कहते हैं जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन में ज्यादा विचार आते हैं, मन के विचारों को कैसे कम करें, ऐसा राजू पूछते हैं दीदी
जी। हम लोगों को आदत है ज्यादा सोचने की, हम एक बोल बोलना चाहते हैं तो उसमें 10 विचार तो आते हैं, ऐसे हमने अपने आप में अपने आप को आदत डाला हुआ है। और लेकिन अगर हम ध्यान करते समय कुछ टूल्स का आधार लेंगे, जैसे कि कमेंट्रीज है या गीत है या लाइट म्यूजिक है, ऐसे अगर हम साधना के लिए कोई साधन लेते हैं थोड़ा सा, तो उससे ऑटोमेटिकली जो मन बाहर भटकता है उसका भटकन कम हो जाएगा। सिस्टमैटिकली जब हम ध्यान करते हैं तो शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग स्टेज में कोई टूल्स का आधार लेंगे तो हमें अपने बारे में सोचने का या कोई एक चीज में खो जाने का जो आदत है वो हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे विचार कम होंगे। और विचार आना नहीं आना ध्यान से कोई मतलब नहीं है, आने दीजिए विचार को, मन का काम है विचार करना, लेकिन उस विचार का प्रभाव हमारे स्थिति पर ना पड़े, आए जाए वो अपने आप, इसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। अगर ऐसा हो जाता है ना तो विचारों का आना भी बंद हो जाता है। और मन को भगवान के साथ जोड़ने का जब अभ्यास करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं या खुद की खूबियों के बारे में सोचते हैं, तो मन का भटकन ऑटोमेटिकली कम होता है। भटकन होने के कारण ही अनेक विचार आते हैं एक विषय में, मैं ये नहीं कहती एक वस्तु में या एक जगह, एक विषय में, सब्जेक्ट में जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उस विषय के बारे में सोचने की जब हमें आदत हो जाती है। वैसे अगर परमात्मा को भी एक सब्जेक्ट मान के चले हम अपने जीवन का, तो मन में उन्हीं के बारे में विचार आएंगे, तब बाहरी विचार आना बंद हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज होगा। बाद में जैसे जैसे हम अनुभवों में खोते जाते हैं, अनुभवों में ऑटोमेटिकली हमारे विचार कम होते जाते हैं। थोड़ा सा अभ्यास योग युक्तेन, है ना।
बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि मन में ज्यादा विचार आना कोई बुरी चीज नहीं है, मन का काम सोचना है, और विचार को आने दीजिए, धीरे धीरे वो अपने आप कम होते जाएंगे, और अभ्यास करने से, जैसे आपने कहा, ये प्रैक्टिस से ये सारी चीजें कंट्रोल में आती हैं। और योग शायद इसी चीज के लिए कि अपने मन को काबू में लाने के लिए एक टूल के रूप में हम सबको दिया गया है, और इसे हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तपस्या करेंगे इस पर, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न मैं और ले लेता हूं, अगर आप कुछ भी लिखना चाहें तो भी आप प्रश्न लिख दें। सारे प्रश्न मैं आज के कार्यक्रम में इंक्लूड नहीं भी कर पाऊंगा, तो कुछ प्रश्न मैं कल के कार्यक्रम के लिए आगे ले जाऊंगा और कल के प्रोग्राम में उसे इंक्लूड करके ही की जाएगी। पवित्र मजूमदार हमारे साथ हैं, फेसबुक पे कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। वो कहते हैं, व्हाई डोंट वी लव ईच अदर अनकंडीशनली, व्हाई डोंट वी लर्न टू लव अनकंडीशनली टू ईच अदर। तो ये पूछते हैं कि हम चाहते तो हैं कि भाई हम एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करें, मगर ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता और हम क्यों नहीं सीख पाते कि हम अनकंडीशनली प्यार करें? ऐसा पवित्र पूछते हैं, पवित्र मजूमदार।
बहुत बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है पवित्रा बहन ने हमारे से। हाँ, वास्तविकता में अनकंडीशनल लव दुनिया में भगवान ही कर सकता है, और कोई मनुष्य स्वार्थ होने के कारण, एक्सपेक्टेशंस होने के कारण उसके अंदर अनकंडीशनल लव, वो खुद चाहता है मुझे सब अनकंडीशनल लव करे या प्यार करे, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका खुद का ना दूसरों से, सभी से, दुनिया से, समाज से, सभी से उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत है। ये एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होता है तभी उनका अनकंडीशनल लव नहीं होता है। लेकिन अगर हम जिस बारे में हम बात कर रहे थे तपस्या, जितना जितना हम अनकंडीशनल लव देने वाला परमात्मा के साथ खुद को जोड़ते जाएंगे ना, तब हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम होता जाएगा दुनिया से, क्योंकि जो मेरे भाग्य में मिलना है मुझे मिलने ही का ही, वो कोई नहीं दूसरा ले सकता, लेकिन मेरा, मेरी साधना, मेरी पुरुषार्थ कोशिश तो जारी रखनी है मुझे, लेकिन दूसरे से मुझे नाराज नहीं होना है कि इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। जब ये हम प्रैक्टिकली समझेंगे, है ना, ज्ञान समझना एक दूसरी बात है, प्रैक्टिकली जब हम ये समझेंगे तब हमारे अंदर अनकंडीशनल लव होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप दे सकती हूँ। ठीक है, हम पूरे दिन अनकंडीशनली नहीं रह सकते हैं सभी के साथ, लेकिन हफ्ते में एक दिन हम सभी हमारे घर वालों के साथ एक दिन अनकंडीशनली रहने का एक प्रयास करके देखें। धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। अगर आपको ये मुश्किल लगता पूरा एक दिन करना, तो एटलीस्ट एक घंटा तो करके देखिए। पहले हम एक घंटा सभी से अनकंडीशनल लव करेंगे, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ये चीज यहाँ क्यों रखा, ये चीज यो ऐसे होनी चाहिए, मैं मास्टर नहीं बनूंगी, छड़ी पकड़ के नहीं बैठूंगी। ऐसे खुद से हम अगर तप करना शुरू करें ना, हफ्ते में एक दिन या एक घंटा मैं अनकंडीशनल स्टेज को, अनकंडीशनल लव को खुद स्टार्ट करूं, तो शायद मैं, मेरा घर, मेरा आसपास, मेरा समाज बदल जाएगा। इसलिए शुरुआत मैं समझती हूँ पवित्रा बहन खुद से शुरू करें, और हम तो शुरू कर चुके हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए अनकंडीशनल लव को महसूस करने में और बांटने में।
इतनी खूबसूरत बात आपने कही दीदी कि ये अनकंडीशनल लव देना भी एक तपस्या है, और एक घंटे के लिए तपस्या कर लेते हैं, चलिए एक घंटे में हम किसी को कुछ टोकेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, ये क्यों यहाँ रखा है, वो क्यों यहाँ रखा है, ये पूछे बिना अगर हम बिल्ड करते जाएं, एक दिन हम अनकंडीशनल लव वाला कर लें, फिर धीरे धीरे आदत को बनाते जाएं, तो फिर वो जीवन की धारणा और जीवन की तपस्या बन जाएगी, और तब ये सहज संभव हो सकता है। हमें अपने आप को ये पॉजिटिव थॉट देकर शुरुआत करनी है। मैं समझता हूँ एक आखिरी प्रश्न मैं ले लेता हूँ। सौम्या जी हमारे साथ जुड़े हैं, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को। वो कहते हैं, इफ समवन इज टॉक्सिक एंड नेगेटिव ऑल द टाइम, हाउ टू हेल्प देम। हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं वो हमेशा टॉक्सिक होते हैं, हमेशा कुछ गलत नेगेटिव चीजों ही बात करते रहते हैं, वही विचार उनके चलते रहते हैं, ऐसे समय पर हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सौम्या पूछते हैं।
जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा पहला आपके साथ ये विचार है कि पहले हम सेफ रहे ऐसे टॉक्सिक लोगों से या नेगेटिव लोगों से, उनके प्रभाव में हम ना आए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरों को हेल्प करने के लिए, जैसे कि अभी कोरोना टाइम है, कोरोना अगर किसी को हुआ है उनको हम हेल्प करना चाहते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी देखते हैं ना, खुद डबल मास्क लगाए, खुद सेफ रहे, खुद पीपी किट लगाए, बाद में हम उनको मदद करें, नहीं तो खुद भी शिकार बन जाएंगे। इसी तरह जो टॉक्सिक थॉट्स वाले हैं या नेगेटिव थॉट्स वाले हैं या ऐसे बोलते हैं, उनके प्रभाव में हम ना आए, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, उनको हम उस नजरिए से नहीं देखे, ये तो सदैव टॉक्सिक ही बोलते हैं, ये तो है ही नेगेटिव, ये सोच हम अपने मन में बार बार न लाए, जिससे वाइब्रेशन बनता है। और आपको पता है हमारे शब्दों से पहले हमारे वाइब्रेशन पहुंचते हैं, इसलिए जो व्यक्ति पहले से टॉक्सिक है, नेगेटिव है, अगर हम उनके बारे में बार बार ऐसे सोचते रहेंगे तो वो फिर उसी में ही ठप्पा लग जाएगा उसका। इसलिए ये दो सेकंड स्टेप हुआ कि हम उनके बारे में ऐसे ना सोचे, क्योंकि एवरी सोल इज ओरिजिनली इटर्नली प्योर, है ना। सभी मनुष्यात्माएं मूल स्वरूप में सब पवित्र है, शुद्ध है, उसे स्वरूप को हम महसूस करें। और तीसरा क्या है, जितना हो सके हम उनके बारे में, नहीं इस ऑल उनके बारे में हम पॉजिटिव एनर्जी भेजे उनको। अगर वो नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है हम रिसीव ना करें, और हम पॉजिटिव एनर्जी उनको देते रहे। उसके लिए मैं आपको लास्ट में ये एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि हम पौधे लगाते गुलाब का, उसमें जो हम उसके लिए फर्टिलाइजर्स डालते हैं वो कोई हम पनीर की सब्जी या खीर डालते नहीं है, है ना। जो गली हुई सड़ी हुई चीजें हैं उसको हम फर्टिलाइजर्स के रूप में डालते हैं, जिससे बहुत सुंदर फूल निकलता है। इसी तरह उनके टॉक्सिक नेगेटिव सोच को हमें प्यूरिफाई करके लेना है, उनको प्योर वाइब्रेशन देना है। इसी तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, शब्दों से किसी को नहीं बदल सकते हम। एक हद तक शब्द काम आ सकते हैं, लेकिन अंत तक काम आने वाले हमारे प्योर वाइब्रेशंस है और प्योर लव है, जिसकी अनकंडीशन लव की बातें हो रही थी। इसके आधार से हम किसी व्यक्ति को हेल्प जरूर कर सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। हमारे कुछ साथी पूछ रहे थे कि मुकेश कुमार जी पूछते हैं कि हम आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुकेश जी, मैं ये समझता हूँ ब्रह्मा कुमारीज के ऑनलाइन कोर्सेज भी अभी चलते हैं, और लॉकडाउन की परिस्थितियां जहां पर हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा खुलेगा तो फिर आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पे जा सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के अनेकों केंद्र हैं पूरे भारत और विश्व के 140 देशों में, और भारत के हर जिले में, हर तहसील में आपको ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स मिल जाएंगे। इसकी जानकारी आप ब्रह्मा कुमारीज के वेबसाइट brahmakumaris.com पर ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, इस मैसेज को हम रिप्लाई भी करेंगे आपको। और अगर आपको कुछ और ज्यादा जानकारी चाहिए, स्पेसिफिकली किसी कोर्स से रिलेटेड, या फिर उसके लिए भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हम जरूर आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर हैं। दोस्तों, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत छोटा है। इस छोटे से प्रोग्राम में हम फिजिकल योगा और फिर योग के आध्यात्मिक चिंतन को बोध के रूप में और प्रश्नोत्तर के रूप में हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं, और फिर मेडिटेशन का प्रैक्टिस भी करते हैं। आज दीदी हमारे साथ जुड़े, मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल फिर दीदी जी से मुलाकात होगी ऐसी आशा है, मगर आप आज आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। जो बातें हमने आज दीदी जी से सुनी, जो बोध हमने लिया है, उस तपस्या को थोड़ा करके देखते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो आइए राजयोग मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, और हर दिन हम एक अलग अलग विषय पर मेडिटेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट पर मेडिटेशन या ध्यान कर रहे हैं। और राजयोग यही सिखाता है कि हमारे जीवन के अंदर हम अच्छे विचारों को ले आकर उसे ध्यान में लाने से वो एक तपस्या का स्वरूप बन सकता है। और इन्हीं अच्छे विचारों के ऊपर आज मेडिटेशन कराने के लिए हमारे साथ कोलकाता से राजयोगिनी अस्मिता दीदी जी जुड़ रहे हैं, और वो हमें मेडिटेशन का अनुभव कराएंगे। अगर आप पहली बार आज जुड़े हैं तो भी घबराइए नहीं, ये सभी के लिए बहुत ही आसान मेडिटेशन एक्सपीरियंस है। इसके लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तैयारी के रूप में। जहां आप बैठे हैं वहां रिलैक्स होकर बैठे, ताकि हम अगले 5-7 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकें। तो चलिए करते हैं राजयोग ध्यान यानी कि मेडिटेशन। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका। अब हम आपसे आज के विषय पर, आशा और प्रकाश, इस विषय पर मेडिटेशन करेंगे, तो कृपया मेडिटेशन को आगे बढ़ाएं।
शांति
दोस्तों,
आज सारे विश्व गगन में अंधकार और निराशा के बादल छाए हुए हैं। अज्ञानता के वश आज मानव क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। निराशा के कारण, हताशा के कारण आज इंसान जीवन जीने की इच्छा को भी खोता जा रहा है। ऐसे समय में हमें विश्व की आत्माओं में प्रकाश और आशा की किरणें फैलाने की जरूरत है। तो चलिए, ज्ञान सूर्य परमात्मा के संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सबको प्रकाश की किरणें देते हैं। चंद मिनटों के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करें मस्तक के बीच। विजुअलाइज करें एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है। अपने ध्यान को फोकस करें परमात्मा के ऊपर। महसूस करें परमात्मा की दिव्य अनंत किरणें मुझ पर बरस रही है। मैं आत्मा ज्ञान की किरणों से प्रकाशित होकर फरिश्ता बनकर उड़ चली विश्व ग्लोब के ऊपर। विजुअलाइज करें अपने आप को फरिश्ता के रूप में। मेरी नजर विश्व की अनेकानेक आत्माओं पर है। जो जीवन से हार चुकी है, जो कहीं अज्ञानता के वश गुमराह होकर गलत कदम उठा रहे हैं, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का प्रकाश मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर उन सबको दे रही हूं। विजुअलाइज करें परमात्मा से प्रकाश की किरणें मेरी ओर और मेरे से उन सब तक पहुंच रही है। परमात्मा से प्राप्त हिम्मत, साहस मैं उन सभी आत्माओं को दे रही हूं जो कहीं जीवन से हार चुके हैं, निराश हताश हो चुके हैं। जैसे जैसे परमात्मा की किरणें उन तक पहुंच रही है, उनके मन में आशा का संचार हो रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है हर अंधियारी रात के बाद सवेरा अवश्य आता है। उनके मन में धीरज, बढ़ता जा रहा है। जीवन की हर एक परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का उमंग उनमें भरता जा रहा है। मानो विश्व गगन से अंधकार और निराशा के बादल छटते जा रहे हैं। चारों तरफ खुशहाली छाती जा रही है। विजुअलाइज करें, मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर परमात्मा से प्रकाश और आशा की किरणें मुझ में समा रही है और मुझसे दुनिया की करोड़ों आत्माओं तक पहुंच रही है। ये मास्टर ज्ञान सूर्य रहम दिल बनकर सारे विश्व में प्रकाश और आशा की किरण फैलाती जा रही हूं। ज्ञान का प्रकाश सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा सभी को प्रदान कर रहा है और आशा की किरणें जीवन को खुशी, मौज और सकारात्मक ढंग से बिताने का उमंग प्रदान कर रहा है। सारे विश्व की आत्माओं में खुशी और आशा की लहर फैलती जा रही है। ज्ञान का प्रकाश फैलता जा रहा है। ओम
बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता दीदी उस बहुत ही खूबसूरत से राजयोग मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के लिए और आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है ताकि हम सब अपने हृदय के अंदर आशा की एक नई किरण जलाएं और हम सब उस प्रकाश को सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनको भी इस चीज की जरूरत है। चलिए आज के बस इतना ही। कल फिर 21 दिवसीय योग चैलेंज के 10वें दिन हम कुछ नए योगासनों, नए विषयों पर प्रकाश डालने और नए मेडिटेशन के साथ हाजिर होंगे, तो कल भी हमारे साथ जुड़ना न भूलें। अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उन प्रश्नों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, उन प्रश्नों को हम कल के कार्यक्रम में भी लेने का प्रयास करेंगे। तो कल लाइव कार्यक्रम 6 बजे के बाद हम शुरू करेंगे और 6 से 7 बजे के बीच में हमारी ये बातचीत चलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना रखिए बेहतर ख्याल, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।